हरे कृष्ण। तो ये 12वां अध्याय है दिव्य सेवा के अन्य अंग। शास्त्रों का श्रवण। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसके लिए शास्त्रस्य शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात शास्त्रों की सेवा करना। शास्त्रों की सेवा कैसे की जाती है? श्रवण करके। भगवान के विभिन्न रूपों की सेवा भिन्न भिन्न तरीकों से की जाती है। प्रसाद रूप में भगवान की सेवा कैसे की जाती है? सेवन करने से। श्री मूर्ति की सेवा भी अनेक तरीकों से की जाती है। उसी प्रकार से शास्त्रों का सेवन किया जाता है श्रवण करके और पठन करके। तो विशेष करके यहां पर ऐसे शास्त्रों की सेवा के बारे में रूप गोस्वामी बताने वाले हैं। लेकिन कौन से शास्त्र होने? शास्त्र मतलब क्या है? कोई भी ग्रंथ कोई भी लिखेगा उसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र की परिभाषा क्या है? कौन सी किताब शास्त्र माने जाते हैं और कौन से नहीं? ये तो हमें पता है कि वेद ये शास्त्र है। विद, विद मतलब ज्ञान, विद से आता है वेद, मतलब पूरा ज्ञान। परंतु क्या हमें हमारी भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए समस्त शास्त्रों का अध्ययन करना श्रवण करना आवश्यक है? नहीं। तो क्या परिभाषा दे रहे हैं कि जब हम कहते हैं शास्त्रस्य कि शास्त्र की सेवा करनी चाहिए, तो कौन से शास्त्रों की बात रूप गोस्वामी पाद यहां पर कर रहे हैं? तो वो कहते हैं शास्त्रम अत्र समाख्यातम। शास्त्रम अत्र समाख्यातम यद यद भक्ति प्रतिपादकम्। शास्त्रम अत्र समाख्यातम यद भक्ति प्रतिपादकम्। इसका मतलब बताइए अभी। थोड़ा सा अंतर बताइए। हाँ, ये दूसरी बात सही है कि जिन शास्त्रों में समाख्यातम, जिन आख्यानों में, जिन शास्त्रों में भगवान की भक्ति का प्रतिपादन हुआ है, उन शास्त्रों की बात यहां पर की जा रही है। ऐसा नहीं कि हम कर्मकांड के शास्त्रों के बारे में बात करें, ज्ञान कांड के बारे में बात करें, नहीं। केवल उन शास्त्रों के बारे में जहां भक्ति का प्रतिपादन होता है, भक्ति के बारे में चर्चा की गई है। तो पढ़िए श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं।
श्री रूप गोस्वामी के अनुसार कोई भी ऐसी पुस्तक जो भक्ति के अग्रसर होने में प्रकाश डालती है, वह शास्त्र मानी जाती है। श्री मध्वाचार्य ने भी शास्त्र की परिभाषा रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत या ऐसे ही शास्त्रों के अनुसरण में लिखे अन्य ग्रंथ के रूप में दी है।
फिर आगे स्कंद पुराण में भी इसका प्रमाण दिया हुआ है। पढ़िए।
स्कंद पुराण में आता है जो व्यक्ति वैष्णव भक्ति के अनुशीलन को प्रतिपादित करने के वादे साहित्य के अध्ययन में निरंतर लगा रहता है, वह मनुष्य समाज में कीर्ति पाता है और भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को अपने घर में सावधानी पूर्वक सजो कर रखता है, वह उसे सादर नमस्कार करता है, वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है और अनंत अंततः देवताओं द्वारा पूजनीय बनता है।
तो पहला श्लोक लगाएंगे आप बोर्ड पर, वैष्णवाणी तु शास्त्राणी। तो ये स्कंद पुराण का श्लोक है। वास्तव में ये तीन श्लोकों का अनुवाद यहां रूप गोस्वामी पाद दे रहे हैं, जिसका अंग्रेजी भाषा में श्री प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। वैष्णवानी तु शास्त्राणी ये शृण्वन्ति पठन्ति च धन्यास्ते मानवा लोके तेषां कृष्णः प्रसीदति। अब अर्थ बताइए। वैष्णवानी तो शास्त्राणि बहुवचन, वैष्णव शास्त्रों के, वैष्णव शास्त्रों का क्या, श्रृण्वन्ति पठन्ति च, जो सुनता है एवं पढ़ता है, च मतलब
और।
तो ये श्रृण्वन्ति और पठन्ति के बीच में नहीं आया,
नहीं क्योंकि
कहा है, कभी कभी ऐसे बाद में भी आ जाता है। तो ये श्रृण्वन्ति पठन्ति च, तो जो ऐसे वैष्णव शास्त्रों को सुनता है और पढ़ता है, पठन करता है, उनके बारे में क्या लिखा गया है, धन्याह ते। जब अनुस्वार ऐसे आता है ह और बाद में दूसरा शब्द आता है तो फिर वो स हो जाता है, उसको उसकी संधि स हो जाती है, तो धन्याह ते, तो उसको संधि करने से धन्यास्ते हो जाता है। कौन धन्य हो जाता है, मानवा, जो मनुष्य होते हैं वो धन्य हो जाते हैं। और आगे एस्तेषा मतलब उनके ऊपर, ऐसे लोग, ऐसे लोगों के ऊपर कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो लोग वैष्णव शास्त्रों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके ऊपर श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और वो धन्य हैं। अवश्य ही कृष्ण उन पे प्रसन्न हो जाते हैं। और आगे भी बताया गया है, वैष्णवामी तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नराः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिताः। तो जो व्यक्ति ऐसे वैष्णव ग्रंथों को अपने घर में रखता है और घन घर में रख के अर्चयन्ति क्या करता है, अर्चना करता है, उनकी पूजा करता है या नमस्कार करता है, तो क्या हो जाता है, सर्व पाप विनिर्मुक्ता, सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह अनुवाद दिया हुआ है ना प्रभुपाद जी ने, भवन्ति सुरबंदिताः मतलब देवताओं के द्वारा पूजनीय बन जाता है, वंदनीय बन जाता है देवताओं के द्वारा। और अंत में वो कहते हैं, तिष्ठते वैष्णवम शास्त्रम लिखितम यस्य मंदिरे तथा नारायणो देवः स्वयं वसति नारद। ये भी सुंदर श्लोक है, इसका अनुवाद है। नारद मुनि से क्या कहते हैं,
नारद मुनि के प्रति एक कथन है, हे नारद, जो व्यक्ति वैष्णव साहित्य लिखता है और अपने घर में ऐसे साहित्य को रखता है, उसके घर में सदैव भगवान नारायण का वास होता है।
तिष्ठते वैष्णवम शास्त्रम लिखितम यस्य मंदिरे, तो जिस घर में वैष्णव शास्त्र लिखे जाते हैं, तथा वहां पर क्या होता है, नारायणो देवः स्वयं वसति, भगवान नारायण स्वयं निवास करते हैं। तो अगर आप पठन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं भागवत वगैरह की, तो आपके घर में साक्षात भगवान निवास करते हैं। देखिए शास्त्र सेवा की महिमा। तो शास्त्रों को पढ़ने के लिए प्रभुपाद जी ने आदेश दिए थे, है ना। प्रभुपाद कहा करते थे पुस्तकों का वितरण करो, परंतु खुद पुस्तक नहीं पढ़ोगे तो क्या लाभ। प्रमुखतः तो मैंने पुस्तकें मेरे शिष्यों के लिए लिखी हैं, भक्तों के लिए लिखी हैं, फिर आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ के फिर आपको वितरण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों आदेश दिया, अभी कितने सारे कारण हो सकते हैं, इनमें ही दो तीन कारण लिखे हुए हैं, कई कारण अभी हम पढ़ चुके हैं। तो बताइए, अभी इस्कॉन में है प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, क्या क्या कारण है बताइए एक एक करके, क्यों पढ़ना चाहिए हमें ग्रंथ, प्रभुपाद जी के ग्रंथ? ज्ञान के लिए। तो ज्ञान प्राप्त क्यों करना चाहते हैं हम? स्वयं के कल्याण के लिए। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमारा हित क्या है हम नहीं जानेंगे, तो हमारा कल्याण, हमारा उद्धार कैसे होगा। तो ज्ञान चाहिए हमारे उद्धार के लिए। और दूसरा कारण कई है, बताते जाइए। हाँ,
अगर हम ये नहीं जानते कि इसके अंदर क्या, तो दूसरों को क्या खान बता पाए?
अगर हमें ये नहीं पता है कि किताबों में क्या लिखा है, तो हम कैसे वितरण कर पाएंगे किताबों को? तो हम जब जानेंगे तब हम आगे जाके उसको वितरण कर सकेंगे। तो प्रचार के लिए भी पुस्तक वितरण के कार्य के लिए लाभदायक होता है, आवश्यक होता है बल्कि। और कारण बताइए। बहुत अच्छा, अभी हम पढ़ चुके हैं, क्या है यहाँ लिखा हुआ, तेषां कृष्णः प्रसीदति। ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रभुपाद ने आदेश दिया था पढ़ने के लिए, तो प्रभुपाद प्रसन्न होंगे ना। हमने उनकी किताबों को पढ़ा तो प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, तो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है ना। और अगर प्रभुपाद प्रसन्न हुए तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण हो गया। और हमें क्यों पढ़ना चाहिए बताइए, क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, भक्ति में दृढ़ होने के लिए। ऐसे शास्त्रों को पढ़ते रहने से हमारी श्रद्धा बढ़ती है और साथ साथ भक्ति में हम और दृढ़ हो जाते हैं। नहीं तो शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं नित्य नियम से, तो थोड़ी कुछ कठिनाई जीवन में आ गई तो डावाडोल हो जाते हैं। इसलिए भक्ति में आगे अच्छी तरह से बढ़ने के लिए पुस्तक वाचन आवश्यक है। और बताइए, विद्या और अविद्या में भेद करना हम जान पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। और
जैसे प्रभुपाद सबसे कहते हैं कि प्रचार करो, तो हम प्रचार तभी कर सकते हैं जो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़े और स्वयं अपने जीवन में उनका आचरण करें, क्योंकि बिना आचरण के हम जो कुछ बताएंगे उतना प्रभावशाली नहीं होगा। तो स्वयं के जीवन में आचरण करने के लिए ग्रंथों को पढ़ना भक्ति में जीवन बनाने के लिए आवश्यक है।
तो जीवन में आचरण करने के लिए भी किताबों को पढ़ना आवश्यक है, नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि कैसे जीना है, हमें कैसे खाना पीना है, बोलना है, बर्ताव करना है, कैसे जानेंगे। और ये सब नहीं जानेंगे कि सही आचार क्या है, सही विचार क्या है, तो प्रचार कहाँ से होगा, है ना। और कारण बताइए।
प्रचार करने के लिए जो आवश्यक है भगवान कैसे
है, जब तक हम नहीं जानेंगे कि कि ये दर्शन क्या है, भक्ति क्या चीज है, तो दूसरों को क्या समझाएंगे, नहीं बता पाएंगे उनको। जैसे एक सेल्समैन होता है, वो जिस चीज को बेच रहा है उसके बारे में उसको बहुत जानकारी होती है और पहले से उसने जान लिया होता है कि ये मशीन है, इसके पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, और जाके वो अपने भाषण दे देता है ग्राहक को। तो उसी प्रकार से हम लोग भी सेल्समैन हैं, लेकिन इतना ही है कि हम लोग किस तरह के सेल्समैन हैं। हम कुछ पैसे के लिए नहीं बेच रहे हैं, और बल्कि इसको खरीदने से वास्तव में लोगों को भला होगा। नित्यानंद प्रभु ने इस बाजार को क्या कहा?
नाम
हट। हट मतलब बाजार। तो यहां बाजार वो जगह है जहां कुछ खरीदा जाता है, कुछ बेचा जाता है। तो हमारा काम है हरि नाम को और भक्ति को बेचना, लेकिन किस चीज से ये खरीदा जाएगा, कितने पैसे? श्रद्धा मूल्य। तो मूल्य है श्रद्धा। तो जिसकी जितनी श्रद्धा है वो खरीदेगा, लेकिन हमारे पास उतना माल तो होना चाहिए ना देने के लिए, बताना चाहिए उनको, कन्विंस करना चाहिए। कोई भी वस्तु बेचना है किसी आदमी को तो कितना समझाना पड़ता है उसको, नहीं यही मशीन हमारे कंपनी का मशीन ही सबसे अच्छा है, वो कंपनी का मशीन उतना अच्छा नहीं है। तो हमें ये बताना पड़ता है हरि नाम ही क्यों, कृष्ण का नाम ही क्यों, दुर्गा देवी का क्यों नहीं, इनका क्यों नहीं, उनका क्यों नहीं। तो हमें सही तरह से जान लेना चाहिए, नहीं तो कैसे समझाएंगे दूसरों को, प्रचार कैसे होगा, लोगों का कल्याण कैसे होगा। और बताइए हम क्यों पढ़ते हैं, कितने कार्य
भगवान के दिव्य जन्म कर्म के बारे में।
हाँ, भगवान के बारे में अधिक जानकारी मिलती है जिससे क्या होता है,
हम भवबंधन से
छूट जाते हैं। तो भवबंधन से मुक्त होने के लिए भी हम पढ़ते हैं, और पाप फलों से मुक्त हो जाते हैं, आचार्यों के मनोभाव को हम जान लेते हैं, क्योंकि धर्म के जो गुह्य तत्व हैं वो आचार्यों के हृदय में विद्यमान हैं। तो उनको अगर जानना है तो उनके कथन को हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो इन ग्रंथों के माध्यम से हो सकता है। इन शास्त्रों का पठन क्या हम हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए नहीं करते? हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए करते हैं, हमारे आचार्य गणों ने हमें आदेश दिया है इसलिए हम करते हैं, भले हमें रस लगे या न लगे। ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से कृष्ण प्रेम का उदय होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हम पढ़ते हैं इन ग्रंथों को। तो जिस दृष्टि से भी देखा जाए तो बात स्पष्ट है कि हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, भागवत सेवा, भागवत सेवा मतलब भागवत ग्रंथ को पढ़ना, और आगे चल के हम सुनेंगे कि भागवत व्यक्ति की सेवा भी करना, वो आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन यहां भागवत पुस्तक की सेवा, श्रवण करके पठन करके। तो इसलिए जब श्रीमद् भागवत का विषय आता है तो आइए ये प्रमाण रूप गोस्वामी देते हैं, अगला श्लोक बताइएगा, सर्व वेदांत सारम ही।
श्रीमद् भागवत में
पढ़िए,
श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है। जो व्यक्ति किसी न किसी तरह श्रीमद् भागवत के अध्ययन में लुप्त हो गया है, उसे अन्य साहित्य पढ़ने में कोई स्वाद नहीं आता। दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत के दिव्य आनंद का आस्वाद लिया है, वह संसारी लेखनों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता।
ये भी एक सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का है। द्वादश स्कंध सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते तत्र साम्रत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। अच्छा, अभी इसका मतलब बताइए आप।
सब वेदों का सार ही श्रीमद् भागवत है।
सर्व वेदांत सारम ही, सार ही, निश्चित ही क्या है, श्री भागवतम इष्यते कहा जाता है, है? फिर
जब इसका कोई प्रस्पाल कर लेता है उसके बाद वो दूसरे किसी शास्त्रों में गति नहीं लेता, भगवान से
भेद करके बताइए। तद
अन्यत्र,
तद रस अमृत तृप्तस्य, जो व्यक्ति तद मतलब उस भागवतम, उसके रस के अमृत से तृप्तस्य मतलब जो तृप्त हुआ है, तो जो व्यक्ति इस भागवत को पढ़ के उसके अमृत का, रस के अमृत का पान करके तृप्त हो चुका है, फिर न अन्यत्र, अन्यत्र मतलब अन्य कोई शास्त्र, न अन्यत्र स्याद रति, स्याद मतलब उत्पन्न होता है, रति, रति मतलब आसक्ति या रुचि, क्वचित कभी भी। तो अभी कोई बताइएगा बिना नीचे देखे हुए, आपके ग्रंथ बिना देखे हुए अभी इसका सार बताइए, और कोई, और कोई बताइए, अभी परीक्षित ने एक बार कह दिया, अभी दूसरा कोई बताइए। श्री भागवतम इष्यते,
केवल श्रीमद् भागवत है, और जिस व्यक्ति ने इसका रसा स्वादन करके इसके अमृत को जिसने प्राप्त कर लिया है, जिसे उपलब्ध हो चुका है,
तृप्त हो चुका है,
अन्य शास्त्र में कभी भी रुचि नहीं।
बस देखिए कितने जल्दी से आप लोग संस्कृत पंडित हो गए, सब सारे शास्त्र भी आपको मालूम हो गए। तो इसलिए विशेष करके हमारे लिए भागवत को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो रूप गोस्वामी ने कितने सारे भागवत के श्लोक दिए हैं ना, तो जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं भागवत के, जिनको उन्होंने सामने रखा है, हमने आपको लिख के सुनाया था। ठीक है, अभी 55 मथुरा वास, इसके लिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं मथुराया, जिस प्रकार से शास्त्रस्य का अर्थ है शास्त्रों की सेवा करना, मथुरा का मतलब, मथुराया का मतलब है मथुरा और अन्य तीर्थ स्थानों की सेवा करना। ऐसे तीर्थ स्थानों की सेवा कैसे की जाती है, चलिए आइए पढ़ते हैं। वराह पुराण में क्या कहा गया है,
वराह पुराण में मथुरा के आवासीय मकानों की प्रशंसा पाई जाती है। भगवान वराह पृथ्वी के लोगों से कहते हैं जो व्यक्ति मथुरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों के प्रति आकृष्ट होता है वह निश्चित रूप से माया द्वारा सम्मोहित हो जाएगा।
वराह पुराण वास्तव में जो शब्द है वो प्रभुपाद जी ने यहाँ व्यक्ति कहा है, परंतु वराह पुराण में कहा गया मूढ़ मतलब मूर्ख। जिस मूर्ख व्यक्ति को, जिस मूर्ख व्यक्ति के मन में मथुरा मंडल के अलावा किसी अन्य जगह के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है तो वह अवश्य माया के चंगुल में फंस जाएगा। हाँ, हमारे व्यक्तिगत रूप से परिस्थितियों के हिसाब से हमें अलग अलग स्थानों में रहना उचित होता है, परंतु मन में ब्रज के लिए, वृंदावन के लिए आकर्षण सदैव बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। भले हम कहीं और क्यों न रह रहे हों, दुनिया के किसी भी कोने में, प्रचार हेतु या हमारे परिवार के कारण या किसी भी कारण, परंतु हृदय में तो ये लालसा होनी चाहिए। तो ये आकर्षण जो है, ये लालसा है, ये भी एक प्रकार की सेवा है। और आगे और विस्तार में ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि मथुरा या अन्य धामों की सेवा कैसे की जाती है। पढ़िएगा।
ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि तीनों लोकों के सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के सारे फल मथुरा की पवित्र भूमि के स्पर्श मात्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि मथुरा की भूमि के श्रवण, स्मरण, महिमा गान, वांछा, दर्शन या स्पर्श मात्र से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है।
तो ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि सारे ब्रह्मांड के सारे तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने के बाद जो उसका लाभ प्राप्त होगा, और इस लाभ के लिए श्री रूप गोस्वामी वास्तव में कहते हैं कि वो दिव्य आनंद जो प्रेम की अवस्था में अनुभव होता है, और वो दिव्य आनंद या वो लाभ केवल मथुरा मंडल, मथुरा भूमि का स्पर्श करने मात्र से हो जाता है। और आगे क्या बताया हुआ है, और कई शास्त्र में कहा गया है कि केवल मथुरा के बारे में सुनने से, स्मरण करने से, कीर्तन करने से, इच्छा करने से, देखने से और स्पर्श करने से क्या होता है, सारी इच्छाओं की पूर्णता होती है, पूर्ति होती है। और एक भी है वास्तव में, स्पर्श करने के बाद वो है आश्रय लेना और दूसरा है सेवा करना। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जितने भी तरह की सेवाएं हैं, जैसे एक से एक क्रम से बढ़ते जाकर जब बढ़ के जाते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ती है। जैसे सबसे पहले है श्रवण करना, जब मथुरा के बारे में हम कुछ श्रवण करते हैं तो उससे लाभ होता है, परंतु उससे लाभ ज्यादा होगा जब हम स्मरण करेंगे, उससे ज्यादा लाभ होगा जब हम गुणगान करेंगे, उससे ज्यादा लाभ होगा जब हम इच्छा करेंगे मथुरा में आके वास करने के लिए, उससे ज्यादा लाभ होगा थोड़ी दूरी से दर्शन करने से, अर्थात निकट आने से, उससे ज्यादा लाभ होगा मथुरा का स्पर्श करने से, उससे ज्यादा लाभ होगा जब हम मथुरा का आश्रय लेंगे तब, और सबसे अधिक लाभ होगा जब हम मथुरा भूमि की सेवा करेंगे। उदाहरण क्या दे रहे हैं जीव गोस्वामी सेवा के लिए, सफाई करना, मार्जन करना, ये एक उदाहरण दे रहे हैं। मथुरा मंडल मतलब ये ब्रज भूमि एक उदाहरण है, केवल मथुरा नहीं, अन्य स्थानों में भी, अन्य जो धाम है भगवान के, परंतु विशेष करके मथुरा मंडल का उल्लेख यहां पर किया गया है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण धाम है ब्रज मंडल। फिर आगे 56, भक्तों की सेवा करना, इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं वैष्णवानाम सेवनम, वैष्णवानाम सेवनम। अच्छा घुमाइएगा जरा। पद्म पुराण में शिवजी पार्वती देवी से कहती हैं वैष्णवों की प्रशंसा करते हुए, अभी किताब को मत न देखते हुए इस श्लोक का अनुवाद आपको करना है, ठीक है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। बताइए। हाँ बताइए। बहुत अच्छा। देवी कौन है? पार्वती। थोड़ी गलती यहाँ हो गई। तदीया नाम मतलब उनसे संबंधित। अच्छा पीछे अब देखिए 53 नंबर, तुलसी आदि की सेवा करना। देखिए आपके ग्रंथ में आपने क्या नोट में लिखा है, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, तदीया नाम सेवनम। तदीया नाम मतलब जो भगवान से संबंधित हैं वो। तदीया नाम का मतलब केवल वृक्ष नहीं है, वृक्ष एक उदाहरण है जैसे तुलसी है, परंतु तदीया नाम का मतलब है तदीय शब्द है तदीय। तदीया नाम तो फिर बहुवचन हो जाता है। जो चीजें भगवान के बहुत प्रिय हैं। हाँ तो आगे बोलिए अभी।
जो चीजें भगवान के प्रिय हैं समर्चन उनकी पूजा उनसे श्रेष्ठ।
किन से श्रेष्ठ है?
विष्णु
आराधना से। बहुत अच्छा। इसका मतलब है शिवजी पार्वती देवी से कह रहे हैं कि सर्व आराधनाओं में से विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, परंतु इससे भी श्रेष्ठ उन चीजों की या व्यक्तियों की अर्चना है जो कि भगवान से संबंधित हैं। विशेष करके तदीय का तात्पर्य यह होता है वैष्णवों के लिए, विशेष करके यहां पे। वास्तव में देखिए एक महत्वपूर्ण बात रूप गोस्वामी पाद बताते हैं। आप सुनना चाहते हैं? वो कहते हैं कि जितने भी अंगों का वर्णन हुआ है, भक्ति के अंगों का वर्णन हुआ है जो भगवान से के संबंध में हैं, वही अंग भगवान के भक्तों के संग में भी होते हैं। जैसे सेवा करना या श्रवण करना या जो भी जितने भी हम अंग बता रहे हैं वो सब भगवान के भक्तों से भी संबंधित हैं। तो जब कहा जाता है यहाँ कि हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, तो भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में भी सुनना चाहिए। भगवान के बारे में हमें बोलना चाहिए, शुद्ध भक्तों के बारे में भी बोलना चाहिए। तो जितने भी अंग हैं जो कि भगवान से संबंधित हैं वो भगवान के भक्तों से भी संबंधित हैं। है ना ये महत्वपूर्ण बात। ठीक है, आगे इसके लिए कई प्रमाण रूप गोस्वामी पाद दे रहे हैं आगे कि कैसे वैष्णवानाम सेवनम, कैसे वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। हाँ पढ़िएगा श्रीमद् भागवत में कौन सा उदाहरण है।
श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही कथन मिलता है, मैं भक्तों का निष्ठावान सेवक बनना चाहूंगा क्योंकि इनकी सेवा करने से भगवान के चरण कमलों की अनन्य भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्तों की सेवा समस्त भौतिक संतापों को कम करने वाली है और भगवान के प्रति गहन भक्ति प्रेम उत्पन्न करती है।
तो यहाँ भक्त कह रहे हैं कि मैं भगवान के भक्तों का सेवक बनना चाहता हूँ, क्यों, इससे क्या लाभ होगा, क्यों करना चाहते हैं वो ऐसे सेवा? नहीं, यहाँ क्या बताया हुआ है इसी श्लोक में, क्योंकि भक्तों की सेवा करने से अनन्य भक्ति किन के प्रति प्राप्त होती है? भगवान के प्रति। तो भक्तों की सेवा करने से भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। और क्या लाभ होता है? इसी श्लोक में क्या लिखा है, भक्तों की सेवा करने से
भौतिक संताप,
समस्त भौतिक संताप क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं?
कम
हो जाते हैं। और किस चीज का विकास होता है हृदय में?
भक्ति प्रेम,
प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। अच्छा, और आगे पढ़िए, और कोई पढ़िए, स्कंद पुराण में क्या लिखा गया है? भगवान के भक्तों का दर्शन करने मात्र से इतना लाभ होता होगा तो फिर उनकी सेवा करने से कितना लाभ होगा? केवल दर्शन करने मात्र से जब ये होगा, क्या होगा, यहां लिखा है ना, केवल उनके कार्यों का, वैष्णवों के कार्यों का स्मरण करने मात्र से हम शुद्ध हो जाते हैं, साथ साथ हमारे परिवार भी शुद्ध हो जाता है, लिखा है ना यहां पर। पढ़िए श्लोक को फिर से पढ़िए।
जिनके शरीर पर शंख चक्र गदा एवं पद्म के चिन्ह रूपी तिलक लगे रहते हैं और जो अपने सिर पर तुलसी दल धारण करते हैं तथा जिनके शरीर गोपी चंदन से सदैव अलंकृत रहते हैं, उनका एक बार भी दर्शन करने से दर्शक सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है।
तो दर्शन करने से पापों से मुक्त हो जाता है, तो उनकी सेवा करने से क्या लाभ होगा, इसका वर्णन अभी अगले श्लोक में आएगा, पढ़िएगा।
श्रीमद् भागवत में ऐसा ही कथन मिलता है, भक्त के पास जाने, उसके चरण कमल छूने या उसे आसन लेने से मनुष्य सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे वैष्णव के कार्यकलापों के स्मरण से ही मनुष्य अपने परिवार सहित शुद्ध हो जाता है, तो फिर उसकी प्रत्यक्ष सेवा करने के इस विषय में क्या कहा जाए?
तो वैष्णव सेवा का महात्म्य बड़े विस्तार से शास्त्रों में पाया जाता है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। अच्छा, और जरा घुमाइएगा, चार्ट घुमाइए। अभी आदि पुराण, ये मे भक्तजनः पार्थ, न मे भक्ताश्च ते जनाः, मद्भक्तानां च ये भक्ताः, ते मे भक्ततमा मताः। अब बोलिए, ये मतलब यह, जो मैं, मेरा भक्त जना है, जो मेरे, जो मेरा भक्त है, जो मेरे भक्त जन हैं, हे पार्थ। आगे न मैं भक्त, भक्तस भक्ताश्च ते जना है, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं भगवान, ऐसा ही बोल रहे हैं,
ऐसा ही
पहले लाइन में, पहले दो लाइन में भगवान क्या बोल रहे हैं,
पहले लाइन पे
ये मैं भक्त जना पार्थ, हे पार्थ जो मेरे भक्त हैं, न मैं भक्ताश्च ते जना, वो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त हैं वास्तव में वो मेरे भक्त नहीं है, परंतु मत भक्ता नाम, मेरे भक्तों के जो भक्ता जो भक्त हैं, ते में भक्त तमामता है, वो भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, वो सच्चे भक्त हैं। अर्थात जो अपने आप को मेरा भक्त कहता है केवल, वो भक्त नहीं है, लेकिन जो अपने आप को मेरे भक्तों का भक्त मानता है वो मेरा सच्चा भक्त है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कहना चाहिए मैं कृष्ण भक्त नहीं हूं, ऐसा नहीं कहना है। हाँ, हम हैं कृष्ण भक्त, लेकिन कृष्ण भक्त होने का मतलब क्या है, दासानुदास, वैष्णव दासानुदास होना है। जब हम कृष्ण के भक्तों के भक्त बन जाएंगे तब वास्तव में भगवान हमें स्वीकार करते हैं कि हाँ ये मेरा असली भक्त है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं अर्जुन से। तो दासानुदास, वैष्णव दासानुदास।
जैसे इससे पहले श्लोक में बता रहे थे कि मेरे भक्त की सेवा जो करता है वो मुझे बड़ा प्रिय है, और इसमें भी बताया कि उत्तम भक्ति वही है, तो फिर अगर कोई ऐसे श्लोक का मतलब प्रयोग करके कहता है कि ऐसी बात है तो शिव जी भी तो भक्त हैं या दुर्गा जी भी भक्त हैं, तो उनकी पूजा करता है, तो फिर क्या कह सकते हैं।
अच्छा, अभी आप ही उत्तर दीजिए, प्रश्न समझ गए ना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां बताया गया है कि भक्तों के भगवान के भक्तों के भक्त ही असली भक्त हैं, तो हम कहते हैं कि शिव जी दुर्गा देवी भी भक्त हैं, तो उनकी उपासना करने में क्या समस्या है फिर?
उनकी उपासना सकाम भाव से करनी चाहिए, उन्हें भगवान का भक्त मानकर उनका आदर करना चाहिए।
उनको सकाम भाव से नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो मान लीजिए निष्काम भाव से किया हमने, तो फिर ठीक है। और बताइए, कृष्ण भक्ति दे सकते हैं, वो देंगे भी, परंतु इसमें आपत्ति क्या है?
आपत्ति यह है कि वो स्वयं भक्त होने के कारण वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे।
आपत्ति ये है कि जब हम शिव जी की उपासना करते हैं उनको परम समझकर, उनको सर्वश्रेष्ठ समझकर, या दुर्गा देवी की उपासना करते हैं उनको सर्वश्रेष्ठ समझकर, यह समस्या है, या उनको सकाम भाव से हम उनके पास जाते हैं, या तो निष्काम होते हुए भी उनको परम मानकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो हम पहले तो पढ़ चुके हैं 64 गुणों में एक नियम यह है, 64 नियमों में, कि देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। तो शिव जी हो, दुर्गा देवी हो, गणेश जी हो, सबका आदर करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी आराधना और उपासना करनी चाहिए। नमस्कार करें, ठीक है, उनको उनको सम्मान दें, परंतु अगर उनकी सेवा करना आरंभ किया ये सोचकर कि ये स्वतंत्र हैं, तो वो ठीक नहीं।
तो इसमें सेवा का भाव बदलना चाहिए,
हमें केवल इतना काफी है कि हम श्री कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा करें। जब लोग शिवजी और दुर्गा देवी के पास जाते हैं वो इस भाव से नहीं जाते हैं कि ये भगवान के भक्त हैं।
तो अगर कोई भक्ति के मान के जाता है
तो हमें पहले भक्तों के आदेश का पालन करना चाहिए। तो शिवजी क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि कृष्ण की पूजा करो, तो हम भगवान के भक्तों का आदेश पालन करते हैं। हम लोग क्यों कृष्ण की पूजा करते हैं? प्रभुपाद जी ने बताया आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो भक्त जो भगवान हमें भक्त के पास भेजते हैं, और भक्त कहाँ भेजते हैं? भगवान के पास। फिर भगवान कहाँ भेजते हैं? भक्त के पास। भक्त कहाँ भेजते हैं? भगवान के पास। तो इन दो चीजों से हम संतुष्ट हैं। तो भक्ति में तीन ही चीज है जो महत्वपूर्ण है और जो शाश्वत है। कौन सी है तीन चीजें? भक्त भगवान भक्ति, बस इससे अलावा और कोई चीज आवश्यक नहीं है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं दासानुदास होने के बारे में, गोपी भर्तु हो पद कमलयोर दास दासानुदास। तो जो सच्चा वैष्णव कौन है, जो भगवान के दासों के दास हैं। अगर किसी के मन में बहुत घमंड आ जाता है कि मैं कितना अच्छा भक्त हूं, मैं अच्छा कृष्ण भक्त हूं, तो वो भक्त नहीं है। जो सोचेगा कि मैं कृष्ण के भक्तों का भक्त हूं, वो सच्चा भक्त है। जैसे हम उस दिन चर्चा कर रहे थे, आजकल दासानुदास की भावना नहीं है, बॉसानुबॉस की भावना है। तो ठीक है, अगला अगला नहीं और एक है ना, हो गया। ठीक है, भगवान की लीला संबंधी उत्सवों को मनाना नहीं, इससे पहले
अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा,
अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना, इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं, यथा वैभव महोत्सवो, यथा वैभव महोत्सवो, अर्थात यथाशक्ति उत्सवों को मनाना, जैसे हमारी आर्थिक परिस्थिति है उस हिसाब से मनाना, लेकिन अवश्य मनाना चाहिए। भगवान के उत्सव मनाने के लिए कोई अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो कम पैसे में भी मना सकता है, किसी के पास अधिक धन है तो भले अधिक धन से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी व्यक्ति के पास लाखों रुपए हैं और वो कहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम से हम भगवान को संतुष्ट करेंगे। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो अवश्य अर्पण करना चाहिए सभी को, परंतु इससे अधिक कोई दे सकता है तो वो भी करना चाहिए। हाँ तो पढ़िएगा क्या लिखा है यहाँ पद्म पुराण में।
पद्म पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न उत्सवों को संपन्न करे। हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों एवं समारोहों को अवश्य मनाए।
श्लोक इस प्रकार से है, यह करोति महीपाल, महीपाल मतलब कौन, राजा, क्यों मही, मही मतलब धरती और पाल मतलब पालन करने वाला या राजा। यह करोति हे राजन, यह करोति महीपाल हरेर गेहे महोत्सवम, यह करोति महीपाल हरेर गेहे महोत्सवम। क्या मतलब यह करोति, यह मतलब
जो,
करोति करता है, हे राजन महीपाल हरेर गेहे भगवान के मंदिर में, भगवान के घर में, हरि हरेर, हरेर गेहे महोत्सवम। तो जो व्यक्ति हे राजन भगवान के घर में अर्थात मंदिर में महोत्सव मनाता है तो उसको क्या लाभ होता है, आइए सुनते हैं। तस्यापि भवति, तस्य अपि, उसको निश्चित ही भवति हो जाता है। तस्यापि भवति नित्यम, हमेशा हरि लोके महोत्सव, तस्यापि भवति नित्यं हरि लोके महोत्सवः। तो क्या मतलब बताइए?
भगवान के धाम में नित्य रूप से महोत्सव
यह करोति हरेर गेहे महोत्सवम्। तो जो हरि के गृह में महोत्सव मनाता है वो क्या प्राप्त करता है? तस्य अपि भवति नित्यम, एक नित्य फल प्राप्त करता है। क्या नित्य फल है वो? हरि लोके महोत्सव। कितने समय तक?
हमेशा
के लिए। तस्य अपि या तस्यापि भवति क्या होता है? नित्यम हरि लोके महोत्सवम। तो जो यहां पे कृष्ण मंदिर में महोत्सव मनाता है वो किस चीज का अधिकारी हो जाता है? भगवान के धाम में नित्य महोत्सव मनाने के लिए। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं जब गहराई में जाके पढ़ते हैं, है कि नहीं? अधिकारी हो जाता है, मतलब वो प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण से है। अच्छा, फिर कार्तिक में भक्ति करना, इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं ऊर्जा धरो। ऊर्जा धरो, ऊर्ज आदरो, आदर, आदर करते हैं सेवा करके, है ना? तो ऊर्ज, ऊर्ज आदरो या ऊर्जा धरो, क्योंकि कार्तिक में ऊर्ज व्रत का पालन किया जाता है। यहां प्रभुपाद जी यही लिखते हैं, कार्तिक महीने में जो व्रत का पालन किया जाता है उसे ऊर्ज व्रत कहते हैं। ऊर्ज, ऊर्जा मतलब क्या है?
शक्ति।
तो इससे क्या आपको संकेत मिलता है? क्या नहीं, ये ऊर्जा व्रत, ऊर्ज व्रत का क्या तात्पर्य निकलता है इससे कि कार्तिक महीने जो ऊर्ज व्रत का पालन किया जाता है तो इससे क्या लाभ होता है? आध्यात्मिक शक्ति मिलती है ना। तो यह आगे बताया जाता है, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि कार्तिक महीने में जो व्यक्ति भगवान दामोदर की सेवा करता है, थोड़ी सी भी सेवा, स्वल्प थोड़ी सी भी सेवा करता है, इसे ढेर सारा लाभ, बहुत सारा, बड़ी मात्रा में लाभ उसको मिलता है। जितनी सेवा करता है उसके कई गुना अधिक लाभ उसे प्राप्त हो जाता है जो अन्य समय पर नहीं होता। अन्य समय में जितना जितनी सेवा होती है उतना ही लाभ मिलता है, पर कार्तिक में इतनी शक्ति है कि थोड़ा सा कुछ करने से कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है, हजारों हजारों लाखों गुना ज्यादा लाभ। और क्योंकि ये दामोदर महीना, जो कार्तिक महीने का दूसरा नाम है दामोदर महीना, जिस प्रकार से दामोदर अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं उसी प्रकार से दामोदर महीना भी कृपा करता है भक्तों के ऊपर। दामोदर मास जो है ये भी भक्तों के ऊपर कृपा करता है, और इसलिए जिस प्रकार से भक्तों को दामोदर भगवान प्रिय है उनको दामोदर मास भी प्रिय है। इसलिए तरह तरह की सेवाएं करनी चाहिए हमें, विशेष करके इस दामोदर महीने में या कार्तिक महीने में, जिससे बहुत लाभ होगा। और कार्तिक में कहीं भी सेवा करने से बहुत लाभ होगा, परंतु जब मथुरा मंडल में विशेष करके वृंदावन में आकर यही सेवा की जाती है तो और भी अधिक लाभ हो जाता है। इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो पढ़िएगा आगे, दूसरे पैराग्राफ से पढ़िए। पहले ये बताइए दामोदर का अर्थ क्या है, शब्द भेद करिए। हाँ बताइए। पेट, तो जिनके पेट को रस्सी से बांधा गया था वो है दाम, दामोदर। तो दाम और उदर, तो ओ क्यों हो गया, दामोदर होना चाहिए था ना, दाम उदर होना चाहिए था, दामोदर कैसे हो गया। कल आपको संधि के बारे में बता रहे थे ना, हाँ, अ और उ से ओ हो जाता है, तो अ कहां से आया, दाम है ना, हाँ, अकार आ जाता है म में, तो इसलिए अ और उ से हो जाता है ओ, तो दामोदर। ठीक है, अच्छा पढ़िए दूसरे पैराग्राफ से, पढ़ेंगे कोई दूसरा पैराग्राफ, तात्पर्य क्या है इसका। है ना सुंदर बात। साधारणतः हम सुन चुके हैं कि भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, भुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन भक्ति इतनी आसानी से प्रदान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में हम सुन चुके हैं, क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके कृत दास हो जाते हैं। तो वैसे तो भगवान भक्ति उन्हीं को देते हैं जो भक्ति मार्ग में बहुत ही गंभीर हैं, है ना। परंतु यहां कहा गया है इस श्लोक, पद्म पुराण के श्लोक का तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति निष्ठावान नहीं है, भक्ति में निष्ठा रहित है, फिर भी अगर इस दामोदर या कार्तिक मास में विधि पूर्वक भगवान की भक्ति करता है मथुरा मंडल में, तो भगवान की निजी सेवा को भी प्राप्त कर सकता है। नहीं, ये मात्रा की बात है, मतलब कोई नौसुखिया भक्त भी हो, वैधि भक्ति कर रहा है परंतु उसकी श्रद्धा इतनी तीव्र नहीं है, इतना दृढ़ विश्वास नहीं है, अगर ऐसा नौसुखिय भक्त भी विधि पूर्वक कुछ करता है तो उसे भगवान की निजी सेवा प्राप्त हो जाती है। भगवान की लीला संबंधी उत्सवों को मनाना, इसके लिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं श्री जन्मदिन यात्रा। उत्सव मानव प्रिय, ऐसे कहावत है ना, क्या मतलब इसका, मनुष्यों को उत्सव बहुत प्रिय होते हैं, तो उत्सव वो होने चाहिए जो कि भगवान से संबंधित हैं, जब धार्मिकता नहीं रहती, भक्ति मार्ग नहीं रहता, तो फिर लोग उत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाने की प्रवृत्ति तो रहती है, परंतु भगवान बीच में नहीं होने के कारण ऐसे कोई भौतिक उत्सव मनाते रहते हैं। जैसे कोई बता रहे थे एक भक्त कि सिंगापुर में वो छुट्टी मनाते हैं साल में एक बार या दो दिन या एक दिन, सारे सड़कों पे वो गाड़ियों को बंद करते हैं और सारे लोग सड़कों पे आके वहां संगीत और नृत्य होता है, बस सब लोग यूं ही नीचे आके सड़क पे, कोई इधर उधर से जा रहे हैं, कोई सड़क पे गीत गा रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं, बस कुछ तो चाहिए ना जीवन में, मनोरंजन चाहिए, वही टीवी देखना, वही पैसे कमाना, उसे उब जाते हैं लोग, कुछ और चाहिए, तो उत्सव चाहिए उनको, कुछ तरह तरह के उत्सव ऐसे मनाए जाते हैं सारे दुनिया भर में, परंतु भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें इतने सारे भक्तिपूर्ण, भक्तिमय और धार्मिक उत्सव हैं। जितना जितना भौतिकवाद बढ़ते जा रहा है, उत्सव तो होते हैं लेकिन ये भक्तिहीन होते हैं, इसलिए इनमें कोई रस नहीं रहता है, केवल भोग पे आधारित होता है। परंतु ये जो आध्यात्मिक उत्सव हैं, भक्तिमय जो उत्सव होते हैं, इसमें न केवल मनोरंजन होता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, साथ साथ व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति जीवन में प्रगति करने लगता है। नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी, जननी मतलब माता, तो उत्सव माधव तिथि, जैसे जन्माष्टमी, जैसे यहां वर्णन हो रहा है, भगवान के जन्मदिन आदि जो ऐसे उत्सव के दिन होते हैं, ये दिन ऐसे उत्सवों को जननी, ऐसे तिथियों को जननी बताया गया है जो कि जन्म देती हैं भक्ति को। माता का नाम है माधव तिथि और बच्ची का नाम है, पुत्री का नाम है भक्ति। जहां माता जाती है पीछे पीछे पुत्री जाती है, तो जहां उत्सव होंगे वहां भक्ति होगी। और ऐसे उत्सवों में, ऐसे उत्सवों को भक्ति की जननी क्यों कहा गया है? क्योंकि इनमें भक्ति के प्राय समस्त अंग पाए जाते हैं, श्रवण कीर्तन कथन अर्चा विग्रह की सेवा सब कुछ हो जाता है। और भगवान का मंदिर भी तो वृंदावन ही होता है ना, वैकुंठ ही होता है, तो मथुरा वास भी हो गया, वैष्णवों का सेवा हो गया, प्रसाद सेवन हो गया, सब कुछ आ जाता है उसमें, गीत गाना, कीर्तन करना, संकीर्तन करना, गुणगान करना, भगवान का भागवत का श्रवण करना, गोपी गीत, सब कुछ आ जाता है। इसलिए उत्सव, धार्मिक उत्सव और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि भक्ति के ऊपर आधारित होते हैं, वो समाज के परिवर्तन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र होते हैं, या महत्वपूर्ण एक माध्यम है जिससे कि समाज का कल्याण हो सके। लेकिन आजकल जो सारी संस्कृति है वो भगवान पे आधारित नहीं है, वो आधुनिक सिनेमा आदि टेलीविजन पे आधारित है, इसलिए समाज का पतन होते जा रहा है। तो फिर भविष्य पुराण में क्या कहा गया है, पढ़िएगा।
भविष्य पुराण में का यह कथन इसका प्रमाण है कि भगवान के विविध उत्सवों को मनाने से भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं।
आगे पढ़िए, क्या है श्लोक में, क्या है? हे जनार्दन,
हे जनार्दन,
हे जनार्दन मुझे बतलाए कि आपकी माता देवकी देवी ने आपको किस दिन जन्म दिया। यदि आप हमें यह बतला दें तो हम उस तिथि को महोत्सव मनाए। हे केशी के संहारक केशव, हम आपके चरण कमलों पर पूर्ण रूपेण शरणागत हैं और हम उत्सवों के द्वारा आपको केवल प्रसन्न करना चाहते हैं।
तो उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? भगवान को प्रसन्न करने से, करने के लिए। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हमें प्रसन्न होना है तो सीधा तरीका यही है कि हम भगवान को प्रसन्न करें। और भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना है। देखिए सूत्र कितना सरल है। हमने जीवन को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। बहुत आधुनिक काल में ऐसी ऐसी सूत्र हमने निकाल दिए हैं, लेकिन परम ये जीवन तो बहुत सरल है। हमें करना क्या है? केवल वैष्णवों को प्रसन्न रखना है बस। वैष्णव किस चीज से प्रसन्न होंगे? भगवान की सेवा से। बस वैष्णवों को प्रसन्न रखेंगे तो हमारा जीवन सफल, भगवान भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न। आगे 60वां नियम, अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना। रूप गोस्वामी इसके लिए कहते हैं, श्री मूर्तेर अंघ्रि सेवने प्रीति ही। अंघ्रि मतलब क्या है? चरण। मायापुर में एक पुजारी हैं, पंकजांघ्री प्रभु। पंकजांघ्री का मतलब क्या है? चरण कमल दास, भगवान कृष्ण के चरण कमलों के दास। अंघ्री तो अंघ्री मतलब चरण। श्री मूर्तेर अंघ्री सेवने मतलब सेवन के प्रति, सेवने प्रीति ही। प्रीति मतलब प्रेम। आदि पुराण में क्या कहा गया है पढ़िएगा।
आदि पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है और जो भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अपितु भक्ति की सुविधाएं प्रदान की जाती है।
इसमें कहा गया है, भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को जो कि सतत मेरे नाम कीर्तन में लगा हुआ रहता है और जो दिव्य आनंद का अनुभव करता है, मैं उसे केवल मुक्ति नहीं दूंगा। किस मुक्ति की बात कर रहे हैं भगवान? भक्ति रहित, भक्तिहीन जो मुक्ति है, जो सायुज्य मुक्ति है, उसकी बात कर रहे हैं। भगवान तो भक्ति में मुक्ति जो होती है उनको तो अवश्य देंगे ही देंगे भगवान भक्तों को, लेकिन सायुज मुक्ति कभी नहीं देते अपने भक्तों को। तो मुक्ति की परिभाषा क्या है हम कई बार सुन चुके हैं, फिर से दोहराइएगा, श्लोक बोलिए। मुक्तिर फर्स्ट बोलिए, मुक्ति हितमान्यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। फिर से बोलिए, आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। मुक्ति हितमान्यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। व्यवस्थिति ही ठीक है। मुक्तिर हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। तो इसका मतलब है कि मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि हम शरीर के बाहर हों। इस शरीर में रहते हुए भी हम मुक्त कहला सकते हैं अगर हम सतत श्री कृष्ण की सेवा में रत रहे। तो इसी बात के इसी बात की पुष्टि प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं कि भागवत के अनुसार मुक्ति तो हमारे स्वरूप हमारे स्वाभाविक अवस्था में स्थित होने की तो शुरुआत मात्र है, लेकिन जो मायावादी लोग हैं उनके लिए मुक्ति शुरुआत है या अंत है? चरम लक्ष्य है, अंत है। मुक्ति उनके लिए साध्य है, लेकिन भक्तों के लिए साध्य क्या है? सेवा है, शुद्ध सेवा, शुद्ध प्रेम है, जिससे और सेवा हो सके, भक्ति बढ़ती रहे। एक बार श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने, आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? और जप करने के लिए, ताकि हम और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सके। इसका मतलब है कि भक्ति में साधन और साध्य एक ही है। हालांकि हमने भेद किया है कि ये साधन भक्ति है और साध्य भक्ति है, वो इसलिए भेद किया है कि साधक जो है वो अलग अलग स्तर पे होता है, निम्न श्रेणी के स्तर पे होता है, उसकी भक्ति अभी तक शुद्ध नहीं होती पूरी तरह से, तो उसके मनोवृत्तियां उसके चित्त के अवस्था के अनुसार ये भेद किया गया है। परंतु वास्तव में कार्य तो वही है, नाम संकीर्तन साधन भक्त भी कर साधक भी करता है, सिद्ध भक्त भी करता है। तो साध्य भक्ति प्राप्त करने से ऐसा नहीं है कि व्यक्ति भक्ति करना बंद कर देता है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जब हम जप कर रहे हैं ताकि और जप करने का अवसर प्राप्त हो जाए, और शुद्धता से और प्रेम से हम भगवान के नाम का उच्चारण कर पाए, परंतु मायावादियों के लिए ऐसा नहीं है। उनके साधन अनेक हैं और साध्य है अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को ही मिटा देना, आध्यात्मिक आत्महत्या। फिर भी कर नहीं पाते, सही बात है। अच्छा 61, भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ। ये बहुत सुंदर बात है, वैसे विषय बहुत अच्छा है। अच्छा इसको घुमाइएगा जरा चार्ट को। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक का उदाहरण है जिसकी व्याख्या यहां पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं। काफी लंबी व्याख्या है और सुंदर व्याख्या है। ये श्लोक आप सबने सुना होगा। सुना है ना? आप में से कितने भक्तों ने ये श्लोक सुना है या इस श्लोक को जानते हैं? कंठस्थ कितने भक्तों को है? तो इसको कंठस्थ कीजिएगा। निगम कल्प करोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अच्छा अभी विश्लेषण कीजिए, बताइए। निगम गम
जाना
नी
नहीं
नहीं नीचे निकृष्ट निम्न स्थान पर जाना। निगम मतलब जो ऊपर से नीचे आता है वो क्या है? ऊपर से नीचे तक क्या आता है? ज्ञान आता है ना, वेदों के ज्ञान, वेदों का ज्ञान आता है ना परंपरा में, भगवान से शुरू होकर फिर गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान नीचे आता है, इसलिए वेदों के लिए और एक नाम है निगम। निगम मतलब वेद शास्त्र, क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं ये क्रम से। हम लोग निगम केवल महानिगम टेलीफोन निगम जानते हैं, लेकिन असली निगम तो ये है। तो ये वेद क्या है? निगम मतलब जो वेद है ये क्या है, पढ़िए।
कल्पतरुर
क्या है? कल्पतरुर है क्या, पहले बताइए। सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष है। और ये वेद रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर क्या है? पका हुआ फल, गलित। गलित मतलब पका हुआ फलम। तो ये जो श्रीमद् भागवत है इसकी चर्चा हो रही है कि श्रीमद् भागवत जो है ये सारे वेदों का पका हुआ फल है। वेद जो कि कल्प वृक्ष है इसका पका हुआ फल है। जब फल पक जाता है तो उसका स्वाद मीठा होता है ना। तो ये फल कल्प वृक्ष, वेदों के वृक्ष के फल का फल बहुत मीठा है श्रीमद् भागवत। परंतु एक कारण से ये फल और भी मीठा हो गया है, क्यों? शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। क्या होने से वो उसका स्वाद बढ़ गया है? शुकदेव गोस्वामी के मुख से ये अमृत बहकर आए, अमृत धारा के रूप में बह चुकी है। तो शुक को और एक अर्थ होता है, एक तो है शुकदेव गोस्वामी, लेकिन हाँ दूसरा अर्थ है शुक का तोता। तो तोता जब किसी फल को चखता है तो वो फल और भी स्वादिष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से पहले से ही श्रीमद् भागवत तो बहुत मीठा था, परंतु जब श्रीमद् भागवत का कथन शुकदेव गोस्वामी ने किया तो वही श्रीमद् भागवत और भी मीठा हो गया, द्रव संयुतम। और इस प्रकार से ये रस है जिसका पान आसानी से हर एक व्यक्ति कर सके। इसीलिए क्या करना चाहिए? पिबत, पिबत मतलब पियो, पिबत रसम, पिबत भागवत रसमालयम। इस रस का स्वाद करना चाहिए आपको आलयम। हालांकि आप मुक्ति की अवस्था में भी क्यों न स्थित हो, मुहूर अहो, मुहु मतलब बार बार पीना है, ऐसे नहीं कि एक बार पी के संतुष्ट हो गए, नहीं, बार बार पीना है। रसिका भुवि भावुका, हे रसिक जन, हे भावुक जन, भुवि इस पृथ्वी के ऊपर, हे इस पृथ्वी के ऊपर जो रसिक जन हैं, आप इस श्रीमद् भागवत के रसामृत का नित्य रूप से बारंबार पान करते रहिए, क्योंकि इस भागवत का स्वाद शुकदेव गोस्वामी के बोलने के द्वारा और भी मीठा हो गया है। प्रभुपाद जी यहां अपने व्याख्या में सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, हम ऐसे इशारे करके बता रहे थे ना निगम। अब जब फल की या वृक्ष की का दृष्टांत दिया हुआ है तो इस दृष्टांत को आगे बढ़ाते हैं। सोच लीजिए कि बहुत ही अच्छा बड़ा विशाल आम का वृक्ष है और बहुत ऊंचाई पर एक बहुत ही स्वादिष्ट पका हुआ आम है, तो उस आम को नीचे ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप पत्थर मारेंगे तो हो सकता है वो पत्थर आम को लगे, आम को लग के फिर वो ठीक नहीं हो जाए, या आम टूट के गिरे जमीन पे गिरेगा फिर अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर कोई चढ़ जाए व्यक्ति, या पहले से ही अगर कोई व्यक्ति हो ऊपर, है ना, तो वो उस आम को तोड़ेगा और उसके नीचे जो शाखा है उसके वो दे देगा, और उस शाखा के नीचे और एक शाखा है जहां और एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो उस आम को अपने हाथ से लेता है और उसके नीचे जो शाखा है उसमें और एक व्यक्ति बैठा है उसको दे देता है, और ऐसे करके वो आम ऊपर से नीचे तक जमीन तक पहुंच जाता है बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में। अगर ऐसे ही तोड़ के नीचे फेंक देते तो क्या होता, टूट जाता, खराब हो जाने की संभावना होती। लेकिन ये बड़े सावधानी से एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित होते जाता है और नीचे जमीन तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार से वेदों का ज्ञान ऐसे ही आ रहा है। श्रीमद् भागवत रूपी फल बहुत सुरक्षित ढंग से परंपरा में आ रहा है, गुरु से शिष्य, गुरु से शिष्य, गुरु से शिष्य, और ऐसे करते हुए हम तक पहुंच रहा है। वैसे जो आम होता है सबसे मीठा फल माना जाता है, स्वर्गलोक, स्वर्ग का फल है ये। तो ऐसे फल सबसे श्रेष्ठ फल है, इसकी तुलना प्रभुपाद जी कर रहे हैं यहां पर। तो आइए इस उदाहरण को हम पढ़ते हैं, कोई पढ़िएगा, बहुत सुंदर व्याख्या है। तो बहुत सुंदर दृष्टांत है ना, इसको याद रखेंगे आप, आम के वृक्ष का उदाहरण है। और साथ साथ चैतन्य महाप्रभु फिर कहते हैं कि ऐसे श्रीमद् भागवत को हमें किन से सुनना चाहिए, एक एक आत्म साक्षात्कारी भक्त से जो व्यक्ति भागवत है। तो भागवत मतलब जिनका संबंध भगवान से है। चैतन्य चरितामृत में भी हम सुनते हैं, जाहो भागवत पढ़ो भागवतेर स्थाने। स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक कवि को कहते हैं, तुम भागवत जानना चाहते हो तो जाओ भागवत के पास, वहां जाकर भागवत पढ़ो। व्यक्ति भागवत से पुस्तक भागवत सुनना चाहिए, तब हम समझ जाएंगे, और दोनों की सेवा करनी चाहिए, पुस्तक भागवत की सेवा करनी चाहिए श्रवण करके, साथ साथ व्यक्ति भागवत की सेवा भी करनी चाहिए। और आगे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी का, कि हालांकि सुखदेव गोस्वामी अपने मां के गर्भ में होते हुए भी एक मुक्त पुरुष थे, फिर भी उन्होंने जब से श्रीमद् भागवत का स्वाद लेना प्रारंभ किया कि वो भक्त बन गए। इस घटना के बाद ही, इसलिए जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे श्रीमद् भागवत अवश्य सुनना चाहिए कृष्ण भक्तों से। सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया जाता है कि वो पहले ब्रह्मवादी थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे, फिर भी वो कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गए। अच्छा, घुमाइएगा चार्ट, अगला श्लोक, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये, है ना। ये सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया गया है, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया
गृहीत चेता राजर्षे
आख्यानाम यद अधीतवान। अभी बताइएगा नैर्गुण्य, नैर्गुण्य मतलब निर्गुण, नैर्गुण्य मतलब निर्गुण में, नैर्गुण्ये तो निर्गुण में अर्थात अक्षर ब्रह्म निराकार ब्रह्म में अपि हालांकि परिनिष्ठितः निष्ठा, निष्ठा से शब्द आता है परिनिष्ठितो। तो अभी बताइए क्या अर्थ हो सकता है, उनकी निष्ठा निर्गुण में थी हालांकि वो बहुत ही दृढ़ता पूर्वक निर्गुण के उपासक थे, फिर भी आगे क्या हुआ। उत्तम श्लोक कौन है, उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण लीलाया, उनकी लीला। तो क्या हुआ, गृहीत, गृहीत चेता, गृहीत मतलब ग्रहण करना, अपने चित्त में उन्होंने ग्रहण कर लिया हे राजर्षे। तो फिर आख्या नाम यद अधीतवान, तो वास्तव में उन्होंने इसको पढ़ना विदितवान शुरू कर दिया, इस आख्यान को, इस श्रीमद् भागवत को। तो पढ़िए फिर श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध ने क्या कहा है।
श्रीमद् भागवत में शुक्र भगवान स्वीकार करते हैं कि यद्यपि वे निराकार ब्रह्म के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे, किंतु जब उन्होंने अपने पिता व्यासदेव के मुख से भगवान की दिव्य लीलाएं सुनी तो श्रीमद् भागवतम के प्रति अधिक आकर्षित हुए। भाव ये है कि व्यासदेव भी सर्वोप सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने अपना पक्व दिव्य ज्ञान शुकदेव गोस्वामी को ऊपर कथित विधि से प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया।
तुल्यामलवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम् भगवत संगि संगस्य मर्त्यानाम किम् उताशिषः। अच्छा अभी अर्थ बताइए, तुल्य, तुल्य मतलब तुलना, तुल्यामि लवेन, लव मात्र, लव, लव क्या है, क्षण का भी एक ग्यारहवां हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा है समय का। न स्वर्गम न अपुनर्भवन, न पुनर्भवन नहीं न अपुनर्भवम, मतलब स्वर्ग नहीं, अपुनर्भवम क्या है मतलब मुक्ति, अपुनर्भवम हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी, भव मतलब भौतिक सृष्टि है, भौतिक अस्तित्व, पुनर्भवम मतलब
बार
बार जन्म लेना, न पुनर्भवम मतलब
मुक्ति,
मुक्ति, न स्वर्गम न अपुनर्भवम, अपुनर्भवम भगवत संगी संगस्य, भगवत संगी कौन है, भगवान के भक्त जो कि भगवान का संग कर रहे होते हैं, संगस्य उनका संग करना अर्थात भगवान के भक्तों का संग करना, ऐसे भक्तों के भगवान के संगियों का संग करना कितने समय के लिए, लवेण लव मात्र, ऐसे भगवान के भक्तों का संग करना, इसकी तुलना स्वर्ग से नहीं की जा सकती, अपुनर्भवम मुक्ति से भी नहीं की जा सकती। तो फिर किम मर्त्यानाम इस संसारी भौतिक जगत के उस आशीष है, आशीर्वाद या आशीष मतलब आशीर्वाद यहाँ के जो प्रदान होते हैं, तो इनका क्या कहना, फिर भगवान के भक्तों का संग इतना मूल्यवान है कि इसके एक लव मात्र से भी स्वर्ग प्राप्ति मुक्ति प्राप्ति की तुलना भी नहीं हो सकती। तो फिर इस संसार के वरदानों की बात तो दूर है। तो आइए पढ़िए। शुद्ध भक्तों के समाज में
श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने का महत्व शौनक मुनि ने नैमिषारण्य की सभा में सूत गोस्वामी की उपस्थिति में बतलाया था। सूत गोस्वामी ने पुष्टि की थी कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भक्त की संगति करने का अवसर लाभ करता है तो वह विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचाने वाले या भव सागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में जो लोग श्रीमद् भागवत के प्रति अनुभक्त हैं उन्हें स्वर्ग जाने से मिलने वाले किसी लाभ या विशेष वादियों द्वारा वांछित मुक्ति की कोई परवाह नहीं रहती। फलतः शुद्ध भक्तों की संगति दिव्य रूप से इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी भौतिक सुख इसकी क्षमता नहीं कर सकता।
तो देखिए भगवान के भक्तों का संग कितना मूल्यवान है। और आगे हरि भक्ति सुधोदय इसका उदाहरण दिया हुआ है जिसमें प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप के बारे के का इनका एक वार्तालाप होता है, पढ़िएगा। अब याद रखिए कि हिरण्यकश्यप कह रहे हैं और हिरण्यकश्यप जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं। हाँ पढ़िए।
इसी प्रकार यदि हम पुष्प जैसे भगवत भक्तों की संगति करते हैं और हमारे हृदय स्वच्छ हैं तो यहाँ भी वैसी ही घटना घटेगी।
ठीक है। तो ये उदाहरण हिरण्यकश्यप से भी हम सीख सकते हैं। हिरण्यकश्यप ने हमें संग के प्रभाव का ज्ञान दिया है। तो संग कैसा होता है? एक मणि की तरह है। मणि की क्या खूबी होती है? प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। आप मणि के सामने जाएंगे तो आपको प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा मणि के अंदर। तो उसी प्रकार से आप जैसा संग करेंगे वैसे ही आप भी बन जाएंगे। और इसी प्रकार से प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि पुत्र उत्पत्ति संतान उत्पत्ति के लिए पुरुष और स्त्री अगर दोनों ठीक हैं तो फिर संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर ज्ञान देने वाले और ज्ञान स्वीकार करने वाले दोनों ही सिंसियर हैं, दोनों ही उत्सुक हैं तो फिर परिणाम अच्छे होंगे, भक्ति का उदय हो जाएगा। 62 नंबर है, प्रगट भक्तों की संगति करना। इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं सजातीय मतलब लाइक माइंडेड, जो हमारे जिनका सोचना वगैरह हमारे सोचने के समान है। सजातीय आशय सजातीयाशय स्निग्ध स्निग्ध मतलब सौम्य प्रेमी सजातीयाशय स्निग्ध श्री भगवत भक्त संगो ठीक है। तो यही समाप्त करते हैं अभी आज क्लास। और हम अभी मिलने वाले हैं 25 तारीख को। आज 18 है ना, तो याद रखेंगे आप 25 तारीख 3:30 बजे। और यहाँ फिर आप बताइएगा इनको, जो भक्त देखभाल करते हैं हम बताएंगे ना उनको कि 25 तारीख को यहाँ तैयार रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कमी हमें जल्दी ही जाना होगा क्योंकि आज ही हम बाहर जा रहे हैं। तो आपको 25 तारीख फिर आप सबका संग हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।